भाई 5-10 मिनट तक तो ये चलेगी ना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एषसुरासुरमनुसिन्धुवन्दितं दोदघायीकम्यमलं पडमामि वढ्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे चरित तौ वीर्यायारे ते सवे संगम संगम पत्येगमेव पत्येगम वंदामि यभट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारंताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावय भग्गाणं साहूणं चेव सवेसिं तेसिं विशोध दंसन प्राणपाणा समम समासिज ओ समयाम समम जत्तोणे वाण संपत्ति। प्रवचन साठ जी का अपन स्वाध्याय कर रहे 191 गाथा। मैं पर का नहीं पर मेरे नहीं, ऐसा जो अपने आत्मा को पर से भिन्न ध्याता है वो ध्यान काल में शुद्धात्मा होता है। इसकी चर्चा तो पूरी हो गई, ध्यान का स्वरूप भी बताया, ध्येय में उपयोग का एकाग्र हो जाना। ध्येय का निश्चित हुआ तो ध्येय क्या है उसके लिए 192 गाथा लेते हैं। उसमें आचार्य ने स्वयं ध्येय क्या है वो बतला रहे, सब जगह मिलेगा सब ग्रंथों में। देखिए इसके 192 गाथा है ना आपके सामने, उसकी हेडिंग देखेंगे आप, उसमें लिखा है अब ऐसा उपदेश देते हैं कि ध्रुवत्व के कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है। ये हेडिंग उसमें, अत ध्रुवत्वात् शुद्ध आत्मा एव उपलम्बनीय इति उपदिशति। अब ऐसा उपदेश दे रहे हैं ध्रुवत्व के कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में पूरे आत्म तत्व की विशेष जो चर्चा हुई, उत्पाद वे ध्रुवत्तम सत है और उपयोग लक्षण वाला है, सारी चर्चा करने के बाद चैतन्य असाधारण लक्षण से ये पहचाना जाता है। उसके बाद आचार्य देव ने यहाँ पर शुद्ध रह की आँख से अपने उस ध्रुव ज्ञायक स्वभाव को देखने की बात उठाई और उसमें शुद्धात्मा दिखाई देता है अर्थात अनुभव में आता है। वो आँख वेद ज्ञान की जिसकी खुल जाती है उसको फिर कहीं पूछने जाना नहीं पड़ता, खुद समझ में आ जाता है सच क्या है गलत क्या है। तो यहाँ कोई शिष्य पूछता है ध्रुवत के कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है, तो गाथा पढ़ते हैं, देखिए आचार्य देव क्या जवाब देते हैं। एवं नाणपाणम दंशन भूतम अनिंद्य महत्तम धूमचल मणालंबम मणेहम अपगम शुद्धम एवं ज्ञानात्मानम दर्शन भूतमतीन्द्रिय महार्थम ध्रुवमचल मनालंबम मन्नेहम आत्मकम शुद्धम हरि गीत है ना, ये रीत दर्शन ज्ञान छे इंद्रिय अतीत मार्थ छे मानु आलंबन रहे जीव शोध निश्चल ध्रुव छे। मैं आत्मा को इस प्रकार पांच मूल बताएंगे, ज्ञानात्मक, दर्शन भूत, अतीन्द्रिय महापदार्थ, ध्रुव अचल निरालंब और शुद्ध मानता हूँ। कौन कह रहे ये, कौन कह रहे? कुंद कुंदाचार्य देव, जिनेंद्र परमात्मा, हम ऐसा मानते हैं अपने आत्मा को, आप कैसा मानते हो? विचार कर लो, मिलान कर लो। जैसा सी गाथा चल रही थी ना इसी प्रवचन सार की, कि हम अरंत को जो ऐसा जाने द्रगुण प्रयास से, तो अपने आत्मा को पहचाने और उसको मोह का भूत खड़ा नहीं रह सकता, भाग जाएगा, निर्मिहत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आपने पिछली गाथा में कहा कि शुद्धने की आँख से देखो, अर्थात हमारे अन्वय रूप धर्मी आत्मा की ओर से देखो, तो हर अवस्था में चैतन्य 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 भासता है। वो चैतन्य लक्षण ही मेरा स्वरूप स्वय आत्मभूत लक्षण है। अभी चल ही रहा था उसमें 294 गाथा में, वो स्वलक्षण है आत्मभूत असाधारण, मेरे सिवा मैंने जीव तत्व के सिवा और अन्यत्र कहीं नहीं है। तो उसमें उसकी जो किरणें प्रकट हैं, किरणें माने मति श्रुत ज्ञान, वो ज्ञायक की प्रसिद्धि कर रही हैं। और ऐसा यहाँ याद दिलाते हैं कि ये किरण रूप में नहीं, मैं तो सूर्य हूँ। इन ज्ञानादि अनंत अनंत किरणों का पिंड समझो, अनंत सुखों की खान, क्योंकि ये रश्मियाँ ये जो प्रकट हैं ये मेरे ज्ञायक का प्रतिनिधित्व कर रही, मेरे स्वरूप का संचेतन करा रही। और उसके लिए कहते उनमें यदि ये निर्णय आ जाए कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, तो अस्ति पूर्वक नास्ति ये अध्यात्म चरणाले होकर नास्तपूर्वक अस्थि की भी बात करता है। ये छोड़ो ऐसा होगा तो तुम्हें आत्मा मिलेगा। यहाँ कहते दोनों एक साथ हैं, आपको आपका ज्ञायक स्वभाव प्रकट बढ़ रहा है, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर और परम भाव लक्षण परम पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य मैं हूँ। वो सकल निरावरण है, शुद्ध जीवत्व भाव जो अनादि अनंत है, उसको आज तक कोई भी ऐसा कर्म आवरण या कर्म नहीं है जो उसका सत्ता से जीरो कर दे, असत्ता में पहुंचा दे, एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस में कर दे, है नहीं। सदाकाल ज्यों को त्यों चिन्मात्र ज्योति स्वरूप व्यक्त बढ़त रहा है बातें थी। अब प्रगट पर्याय में देखो तो उसकी मति श्रुतादि किरणें फैल रही। ये सारा ज्ञान ना हो और दुनिया के पांच इंद्रिय के सारे भोग पदार्थ मिल जाए जीव को, जानने वाला ना हो भोगने वाला ना हो, जानना ही भोगना है। कौन जानता है? जो जानता है वो भोगता है, जानना भोगना और क्या है। तो यहाँ कहते हैं कि तुमने वो सपने अतीन्द्रिय महापदार्थ आत्मा को पहचाना नहीं। कितने शब्द आए इसमें, मैं माने कौन, ये असली मैं, ये बाहर का हेमचंद ज्ञानचंद परोसित्री नपुंसक काला गोरा मूरख पंडित धनी निर्धन ये सब मैं नहीं, ये संयोग संयोगी भाव से भिन्न। तो ऐसा मैं कैसा हूँ अपने आत्मा को कहते हैं इस प्रकार माने जैसा प्रकार 191 गाथा में बताया, जिसने अपने ध्रुव धाम को ध्याया अर्थात उसको पकड़ लिया पहचान लिया वस्तुतः यह मैं हूँ, तो फिर पर्याय का भूत के मैं मर जाऊंगा छूट जाएगा सब छूटे पड़े दिखते, और अपना एकत्व व्यक्त आत्मा में उसका अपनापन आ जाता है। और उस अपनापन के आते ही धर्म का प्रारंभ है। देखो जो जीव के असाधारण पांच भाव कहे गए ना जिनागम में, कौन कौन से, औसमेक छाय कहो भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्त्वम् अवधि परिणाम। अभी अपने पास कितने हैं? तीन हैं। परम पारिणामिक छह, उसमें ज्ञान दर्शन वीर तीनों का ही है। वो तो एक अपन ज्ञान के द्वारा बोलते अनादि से ही, और मोहराग देश। ये अपने इस ज्ञान में छह उसमें ज्ञान ही कमाल का है। संगी पंचेंद्री पर्याप्तक हैं। कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम। वो विचार शक्ति अपने पास मौजूद है, लेकिन हम उस अतीन्द्रिय सुख या स्वावलंबी स्वाधीन सुख की भोक्ता क्यों नहीं? क्यों हमारे ज्ञान ने इंद्रिय विषयों में सुख माना? वो ज्ञान जब तक निर्णय नहीं करेगा, निर्णय ज्ञान को ही करना है। देह में नहीं हूँ इतना भी मान लेता है, लेकिन इंद्रियों को अनुकूल पड़ने वाले विषय भी तो सुख देते हैं कि नहीं? सुख बुद्धि विषयों में पड़ी रहती है। इसी ग्रंथादि राज में 67 गाथा में सिद्ध के आचार्य ने पांच इंद्रियों के विषय जीव को सुखी बनाने में अकिंचित कर, कितनी जड़ पदार्थ इकट्ठे हो जाए इंद्रियों, क्योंकि उनमें सुख था नहीं, है नहीं और मिलेगा भी नहीं। और इसी प्रकार से वो कहते हैं विषय अकिंचित करें, और ये जीव देह में आत्मबुद्धि रखे और इंद्रियों को अपना स्वरूप और उनके द्वारा मिलने वाला जो भी कुछ इंद्रिय जन थोड़ा बहुत सुखावास रूप सुख लगता है ना, उसमें उसकी सच्चे सुख की कल्पना बैठे, वो मिटना चाहे। कि अगर ये सुख नहीं है तो सच्चा सुख कहाँ है, कैसे? ये जीव को ज्ञान नहीं चाहिए। बहुत बड़े बड़े विश्लेषण करता बैठे जगत में, ये जीव को सुख चाहिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, क्या चाहे? सुख चाहे, दुख थे भय भय कहाँ मिले। उपयोग में जैसे 124 गाथा समय समाधि में है। हाँ, क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ कि मतलब जो अपने साथ ज्ञान करने हैं उसके साथ राग भी तो बह रहा है, तो राग का और ज्ञान का क्या स्वरूप हो गया है? जैसे पानी में रंग घोल दिया तो पानी लाल हरा दिखता है, तो पानी लाल हरा हो जाता है। शक्कर घोल दी तो मीठा दिखता है, नमक घोल दिया तो खारा दिखता है, लेकिन पानी पानी रहता है, नमक खारा नमक रहता है। लक्षण से भिन्न करेंगे जो अभी चला 294 गाथा में, राग वो बंध का लक्षण है, दुख का लक्षण है। और देखो तो समय सार में आगे गाथा 72 यहाँ लिखी है। पहले ये अपने ज्ञान को, उसी ज्ञान को जिसमें राग साथ में प्रवाहित है मलिन पानी की तरह, नादूण आस्वाणम असुचित्तिम विवरी भावम चे दुखस कारणम तीय तदु नियतिम कुणधि जीवो असुचिपणा विपरीतता ये आसुरो ना जानी ने बड़ी जानी ने दुख कारण इनती निवर्तन जीव कर। जब तक ये ज्ञान, ये जो साथ में कलमस्ता है, कलमस्ता ने कसायों की और आकुलता और फिर घटी और फिर बड़ी कभी कलुस्ता, कलमस्ता भी बोलते हैं, कलुस्ता भी बोलते हैं, ये अपने ज्ञान में इसका निर्णय करना ही होगा। दो टूक ये जितना भी राग है, ये आग है, ये आकुलता है, और इसमें कभी भी रंचमा सुख नहीं हो सकता। राग ज्ञानी को होवे कि अज्ञानी को, वो चैन से बैठने नहीं देगा। ज्ञानी को पता हो गया राग करने लायक नहीं है, श्रद्धेय हो गया आत्मा, अरागी वीतरागी तत्व, फिर भी कमजोरी वश जो होता है उपाधि वश, तो उससे भी बचना चाहता, हटना चाहता। सच कहा जाए तो ज्ञानी को कर्तव्य बुद्धि का भी राग उपाधि नहीं होता। राग दो प्रकार के ले लिए, कर्ता बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि अथवा बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। राग मात्र ही अकेले नक्की करो, क्यों राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही है। अब ये जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, दोनों में असली वेद ज्ञान तो यही है, राग का ज्ञान से। अब ये ज्ञान में ऐसी ताकत है कि ये लालपन, ये कलुषता या जो आकुलता है, ये क्या मेरे ज्ञान में है कि कोई और कारण है इसके साथ? वो ज्ञान पकड़ सकता है, ज्ञान जान सकता है। और उसके लिए वो प्रज्ञा चैनी की बात की, और टोडरमल जी ने कहा है इसको, जब कसाएं मंद हों और जीव को जैसे अमूल्य तत्व विचार लिखा ना श्रीमद जी ने, ये विचार आए खरे कर्म कौन छो क्या तीतरी, ये ज्ञान में इन किरणों में निर्णय करने की क्षमता है। और जब वो निर्णय कर जाए कि वास्तव में दुख सुख मेरी भ्रमपूर्ण जल्पना कल्पना है और बाकी कुछ था नहीं, मैं काल्पनिक दुख से सच्चा दुखी हो रहा था, काल्पनिक दुख से सच्चा दुखी हो रहा था मतलब दुख भोग रहा था, वहाँ तो था नहीं सर डर रहा था, इसी तरह की ये स्थिति बन रही तो कैसे वेद ज्ञान करें। तो चेत चेतक भाव की वही बात आती, राग वो बंध का लक्षण और ज्ञान वो आत्मा का लक्षण, वो मेरा लक्षण, राग आश्रव तत्व है मैं जीव तत्व, इन दोनों में अत्यंत भाव देखोगे तो वेद ज्ञान की छैनी पटकी जाएगी। एक तरफ तो ये भी कहेंगे राग तुमने किया है वो तो अपनी भूल बताने के लिए, तुम दूर कर सकते हो, कर्म को मत दोष दो, इनने कराया उनने कराया कर्म के उदय से, तो ये बात कि वेद ज्ञान की गिरी बिंजरी टूटा भ्रम का श्रृंग रे, पविया जी का एक भजन है, भ्रम का सिंह उंगाया था, था नहीं कुछ भी, उसका एक दृष्टांत भी याद आ गया, राजा जनक आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि थे, स्वप्न आया उनको कि कोई जंगल में फंस गए और बहुत भूख लगी है, रास्ता नहीं मिल रहा, प्यास लगी है, तड़प रहे भी कोई, स्वप्न में चल रहा तड़पते विलकते निकलते हैं इधर उधर, तो कहीं एक झोपड़ी सी दिखती है वो बियावन जंगल में, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ एक बुढ़िया रहती थी, हे माँ मैं बहुत भूखा हूँ प्यासा हूँ रोटी दे दे कुछ खिला, वो बुढ़िया कहती बेटा मैं देती हूँ, और वो एक बुढ़िया रोटी का टुकड़ा लाती है उनके हाथ में रखती है, स्वप्न चल रहा है, और इतने में एक फाल्कन क्या बोलते बाज पक्षी झपट्टा मार के उसको ले जाता है और नींद खुल जाती है, अरे मैं कहाँ रो रहा था राजा जनक इतना भूखा कैसे, कई लोग को आते होंगे स्वप्न फंस जाते, अब एकदम गमगीन हो गए, अब सवेरा हुआ राजसभा में पहुंचे तो एकदम चेहरा उदास, ये जो मैं राजा महाराजा हूँ ये सत्य है या जो रात में देखा था वो सत्य था, सत्य कौन, सब सभासदों से पूछा सब चुप, अरे महाराज छोड़ो ना बातें बेकार का गलत आ गया होगा तुम कहा, कोई जवाब नहीं, लेकिन एक समझदार वयोवृद्ध व्यक्ति था उनका ही समझ लो कर्मचारी था, ज्ञान तो सबको है ना, महाराज आज्ञा हो तो मैं जवाब देता हूँ, बोलो बोलो राजा, ना वो सत्य था ना ये सत्य है, जैसा रात्रि का स्वप्न जागने पर गायब ऐसी दिवा का स्वप्न सोने पर गायब, ये कुछ नहीं, तुम अपने आप को राजा महाराजा समझते हो, ये भ्रम का भूतड़ा है कुछ नहीं, ये पर्याय भी चली जाएगी, अनंत पर्याय चली गई, ऐसे बहुत आते हैं। तात्पर्य ये है कि ये ज्ञान और राग की तो उसके लिए 126 कलश है, वो टच करते तो मुझे तो सीधे कलश याद आते संवर अधिकार का, चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो कृत्वा विभागम हुए, जो अपने अभी कहा था चैद्रूप वो मैं और जड़ रूप वो राग, वहाँ देह आदि की बात नहीं की, चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो कृत्वा विभागम द्वयो अंतर दारुण धारणेन परितो ज्ञानस रागस्य, ज्ञान और राग का इतने क्या बोलते कठोर हो जाना, दारुण विदारण करना, करवत के द्वारा जब लकड़ी को चीर देते दया करे उसमें, तो राग पे दया मत करना, जब तक राग पे दया करोगे संसार में भटको, राग महा दुखदायी तत्व है। तो कहाँ अंतर दारुण धारण परितो, तो फिर लिखते हैं भेदक ज्ञान मुदयति निर्मल मिदम ज्ञान ज्ञानस्य रागस्य, ज्ञान और राग का तब भेद ज्ञान होता है दोपहरा, ओ ये मैं और ये बेकार की चीज थी और मैं इसको अपना मानता था, पहले अपना मानना तो छोड़, केला खरीद के लाते छिलका साथ में आता है खाने योग्य क्या होता वही जानते, मैं तो बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत बनाया था 1980 में, वो अंग्रेज लड़का वगैरह आते थे ना एनके गांधी लाते थे आपके कैलिफोर्निया वगैरह से, डॉक्टर साहब पाटिल जी ने बुलाया उस समय भोपाल से डायरेक्ट, कोई ट्रेन नहीं थी बस से गया, बस बिगड़ गई 10:30 बजे पहुँचना था, 16 घंटे 18 घंटे की जर्नी थी, टोंक शहर आता बीच में वहाँ पड़ी गई बस, 1:30 बज गया, ठेले वाले से केले मांगे, बाबू जी 1 किलो। कहा नहीं मैं एप्पल थोड़ी मांग रहा हूँ, वहाँ केले तोल के दिए जाते। 3 केले लिए, खाया, छिलके साबुत उसके तराजू पर रखे, भैया इसका दाम वापस दे। हंसने लगा, बाबू जी क्या करो, वो केले छिलके हैं कि केले हैं? असली के साथ जो रहे, असली की वृद्धि करें, सर्दी गर्मी झेले, उसको असली के नाप से तोल दिया जाता है। वो व्यवहार जो असली के लिए है, जो व्यवहार परमार्थ के लिए, परमार्थ को लिए हुए है, वो मोक्ष मार्ग में संभव ज्ञान में अंश पा जाता है, क्योंकि उसकी वृद्धि के लिए करता है वो राग। ये राग का राग नहीं है, वो बीतरागता का राग, पूर्ण बीतरागता चाहे। तो ऐसे इस जीव को आज नहीं तो कल कभी भी ये निर्णय दो टूक करना होगा। वेद ज्ञान कहाँ करना, वेद ज्ञान जो भी आपने कहा, वेद ज्ञान साहू गए समरस निर्मल, ये इसी ज्ञान करणों में ताकत है, जहां राग मिला हुआ बह रहा है। राग चैन से नहीं बैठने देता, करों में लगाता है। आए थे ना सवेरे गुरुदेव के, उसमें ही आए थे, करूं करूं करूं, बस ये कर्म चेतना, भोगूं भोगूं, ये कर्म फल चेतना। और ज्ञान का संचेतन खालिश नी केवल ज्ञान, ऐसा टोडमल जी का 2 जगह शब्द आया मोक्षों पर, नी खालिश ज्ञान का अनुभव नहीं करता है। और इसलिए ये वेद ज्ञान, तो मैं ज्ञान सूर्य हूं, ज्ञान कहां से आता है? इसलिए पहले नंबर पे तो निर्णय की कीमत है, निर्णय की कीमत। ये ज्ञान गियों से नहीं हो रहा, इंद्रियों से नहीं हो रहा, सब राग से नहीं हो रहा, कर्म के उदय से भी नहीं हो रहा, होगा वहां कर्म को, मैं परिणम रहा हूं मैं अपने अज्ञान से, ये सिद्ध किया इसमें। क्योंकि तू परिणमाया, तेरा परिणाम है, तू जान, निमित्त होगा होगा वहां, उसने नहीं परिणमाया तुझे। और इसलिए ऐसे महान सिद्धांत सूत्रों अमृतचंद्राचार्य देव ने कर्ता कर्माधिकार में दिए हैं, ये बुद्धि तोड़ने के लिए कि कर्ता बुद्धि जब तक नहीं टूटेगी जीव की, 3 काल में वेद ज्ञान खड़ा नहीं होगा। 116 से 120 गाथा और 121 से 125 गाथा समय सार में एक सी टीका, एक में द्रव कर्म से भाव कर्म बतलाते हैं, एक में भाव कर्म से द्रव कर्म होता है। तो सबकी मान्यता है कि द्रव कर्म से भाव राग मोह राग द्वेष होते हैं, भाव कर्म होते हैं, और भाव कर्म से कारवण वर्गणा द्रव कर्म रूप प्रणमते हैं। तो वहाँ कहते हैं, इसका क्या लॉजिक दिया, नहीं स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्य ने पारे थे, यदि उसमें स्वयं परिणमने की योग्यता न हो तो जगत में कोई परिणमा सकता नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा कि ना ही वस्तु शक्तियाँ परम अपेक्षन्ते, जगत में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अपने परिणमन के लिए पर की अपेक्षा रख के परिणमा करे, स्वयं सिद्ध परिणमती है, स्वयं उत्पाद में चल रहा। तो 2 पॉइंट निकाले, क्या कोई जगत में अपरिणमते को परिणमा सकता है, अपरिणमते को कोई परिणमा सकता है, क्या कोई स्वयं परिणमते को परिणमाने की जरूरत समझता है? तो जगत में 6 द्रव अपने अपने प्रयास से परिणम रहे हैं, जब इस ज्ञानी ज्ञानवान जीव को जब विचार शक्ति मिली, ये बहुत बड़ी शक्ति है विचार करने की, कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम, राइट और रॉन्ग का, और ज्ञानी अनुभवी की देशना मिल जाए, अनादि से निकले जीव को कहीं ना कहीं कभी ना कभी गारंटी से वीतराग देव साधु का सानिध्य मिलता ही मिलता है, और उसमें से वो अपने स्वरूप सत्ता को पकड़ लेता है। स्वसत्तावलंबी ज्ञान, यही सम्यक दर्शन ज्ञान है। हम परसत्तावलंबी ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान भी उधारी का ज्ञान, तर्क ज्ञान भी उधारी का ज्ञान, लेकिन ये पहले आएंगे, ये तुम्हारे लिए परोक्ष साधन बनेंगे। आगम ज्ञान तत्वार्थ दिया ना, आगम ज्ञान तर्क सहित युक्ति, आगम का अवलंबन युक्ति का अवलंबन, आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन, और गुरुओं का उपदेश। साक्षात गुरु की देशना सुनते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है। गुरुदेव इतनी उम्र में, 90 की उम्र में भी प्रवचन दे रहे हैं, 91 की, उतनी मस्त। भोपाल पंच कल्याणक में करीब 103-104 डिग्री बुखार था, मैं साथ रहता था, 75 की बात है, सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ थी गुरुदेव के प्रचनों में आता, पूरे MP उमड़ पड़ा था, 50,000 तो पहले दिन से, और लास्ट डे तो 1,00,000 हो गए होंगे सब इतना। तो प्रवचन तो करना है, और उसी दशा में बैठे और प्रवचन किया, माने उनके चित्त में और कितनी उसी प्रसन्नता से। तो ये जो अंदर का रस बैठ जाता है वो ज्ञान किरणों के द्वारा ही निर्णय होता है। दुख बाहर में नहीं है, मैंने ही कल्पना जल्पना से पाला पोसा है। एक बार बाबूजी से पूछा ये दुख क्या है, कहाँ से कैसे होता है, काल्पनिक द्रव के काल्पनिक गुण की काल्पनिक पर्याय, उसका नाम दुख है। आत्मा द्रव में, आत्मा के गुण में आत्मा की पर्याय होना चाहिए, उसमें दुख है फिर कहाँ है। तो गुरुदेव कहते अधर में से आता है, स्वभाव में है नहीं, बाहर से कोई पैदा करा सकता नहीं, और पर्याय में हो रहा तो पर्याय की योग्यता है। ऐसे ऐसे उन्होंने मंदिर ये सब चिंतन दिया। फिर किसी ने कहा हमें तो इतना छेवसम ज्ञान नहीं है, क्या करें। हम लोग बैठे थे, बहुत पुरानी बातें याद करते, उनके घर की छत पे वो मूंगफली होती ना छिलके से सूखने डाल देते ना, आई एक चिड़िया आती है, क्या करेगी रजनी भाई तेजन, चिड़िया क्या करेगी मूंगफली देख के, उसको कैसे पता है इसके अंदर मेरा भोजन, क्या करेगी डॉक्टर साहब। प्रवीण भाई चिड़िया पढ़ी लिखी है कि अनपढ़ है, वो चिड़िया ही के दृष्टांत देते चकली आप, हाँ वहाँ दाना है उसका भोजन है, चोंच से उसको तोड़ती फोड़ती और दाना खा जाती, बस इतने ज्ञान की जरूरत है बाबू जी बोले, और कहाँ ज़्यादा जरूरत। ये छिलका ये राग ये छिलका ये अलग है, तुम ज्ञान आनंद स्वामी आत्मा, ये निर्णय करने में तुझे कौन डंडा लिए खड़ा है ये बताओ। सम्यक दर्शन होने के लिए कौन दर्शन को खड़ा है डंडा लिए, नहीं होने दूंगा तुझे। तेरा मूर्ख तेरा ज्ञान एक बड़ा डंडा लेके खड़ा हो जाए मोह के सामने, मोह कहाँ पर हो जाएगा। उसका दृष्टांत देखो, गाथा तो लेना थी इसमें जो बताया है पांच पॉइंट। मैं कैसा हूँ ध्रुवत के कारण, शुद्धात्मा ही ध्येय है माने उपलब्ध करने योग्य है। ज्ञानात्मक दर्शन भूत, दो भूत ज्ञानात्मक दर्शन भूत। तीसरा अतीन्द्रिय महापदार्थ, इंद्रियों के द्वारा तुम कितनी ताकत लगा ले पकड़ में नहीं आएगा। तो अतीन्द्रिय कहाँ से लाए, कहते तेरा ज्ञान सदैव अतीन्द्रिय है, और सुनो इंद्रियों का था ही नहीं, हुआ ही नहीं वो, तो ज्ञान जो इंद्रियों का नहीं है, ज्ञान तो ज्ञायक में से आ रहा है ना, लेकिन ऐसा हो गया जैसे ट्यूबलाइट लगी उसमें जिलेटन लगा दो तो प्रकाश लाल हरा दिखता है, तो हो तो नहीं गया है वहाँ, तो ओरिजिनल उत्पाद है वहाँ जैसा स्वभाव। ये जीव को मिथ्यात का भ्रम का भूत जिलेटन लग गया अनादि से, और उसको ऐसा लगता है कि मैं हो गया, मैं हो गया, हुआ नहीं है मैं हो गया, इस तरह का भ्रम। उसका भी दृष्टांत समय सार में 96 नंबर की गाथा में दो दृष्टांत दिए हैं शैलेश भाई, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट। मोह का भूत लग गया, कहाँ लगा, यहाँ तो किसी को नहीं लगा होगा ना गंगवाल जी, मोह के भूत को भगाओ, है कहाँ मोह का भूत, ये कौन पकड़ेगा, ये ज्ञान करने ही पकड़ेगा। वो तो अलग बात ली, यानी परद्रव प्रभाव में मैं पना, नकली मैं पना असली का, बस यही मिथ्या थी, दोनों रहेंगे साथ में, छिलका दाना सब कुछ शरीर मन वाणी सब पड़ा रहेगा ठाट बाट, लेकिन मेरी सत्ता न्यारी करके देख सकता है तेरा ज्ञान। यहाँ जो आज उजाला है, मान लो ये ट्यूबलाइट भी बंद हो, सब बंद ही है, तो ये उजालापन किसका कहेंगे अनुज, किसका, सूर्य के कहलेगा ना, सूर्य की किरणें रात्रि हो जाएगी तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। ये ज्ञान उजाला है किसका, ज्ञान का आत्मा का, परमार्थ स्वरूप वस्तु मैं हूँ, अनक्रिएटेड गॉड हूँ, परिपूर्ण हूँ मेरी सत्ता। ये बिना स्वीकार किए, इसका निर्णय निश्चय किए बिना ये जीव को तत्व उपलब्धि नहीं हो सकती। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं ज्ञानात्मक दर्शन भूत अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव अचल अनालंब मरणे हम अपगम शुद्धम, मैं अपने को ऐसा शुद्ध मानता हूँ, ध्रुव अचल निरालंब अतीन्द्रिय। तो उसके लिए मैं वो दृष्टांत याद आ रहा था ध्यानाविष्ट का, वहाँ लिखा ना गगन घसाता सिंगड़ा वाला, हमने उसको जरा आपके हिसाब से एक्सपांड किया चकली जैसा। एक गरीब रामलाल नाम का व्यक्ति दुबला पतला, भैंसें पालता है दूध बेचता आजीविका चलाता है, कोई रोग फैला भैंसें मर गई, कर्ज था कोई भैंस ले गया, अकेला घर में पाड़ा बचा, पाड़ा पालते ही ना है कुछ सब। अब बेचारा अब तो मर जाऊंगा, कुछ खाने पीने को नहीं, जंगल में चला गया मरने के लिए। बहुत सारे लोग मर जाते हैं ना, कब कुछ नहीं रहा मेरे पास, कौन खिलाएगा पिलाएगा, क्या करूंगा, तो आत्महत्या करने जंगल में गया। तो जा रहा था तो वहाँ गुफा में एक मुनिराज बैठे दिख गए। अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो भिखारी है, ये यहाँ क्यों मरने आया, इससे पूछ तो ले जरा। तो बैठ गया सामने और बोला, क्यों भैया क्या बात है, पेट तो चिपक रहा है बिल्कुल, खाने पीने को ही मिला, आप क्यों मरने आए इधर पे। तो मुनिराज उसको समाधान करते हैं, क्या समस्या है तुम्हारी। अरे तुम हमसे पूछ रहे, तुम अपनी समस्या बताओ, हमारी कोई समस्या नहीं है, हम बहुत निश्चिंत हैं, बहुत सुखी हैं। तो वो क्या सोचते हैं, पागल जैसा दिखता है, कुछ नहीं इसके ऊपर, तेरा सुखी। अच्छा बोले ठीक है, तुम किस लिए आए। उसने अपनी रामायण बता दी, मैं कंगाल हो गया, कुछ नहीं बचा, भूखा हूँ, मर जाऊँगा, कर्ज है सिर पे, मरने आया मैं तो। अच्छा तो ऐसा कर दूँ, मैं गुफा से बाहर आता हूँ तो गुफा में बैठ जा, और तू मरना तो है ही क्या उसमें, ख्याल में है, अब उसमें तू, तेरे पास क्या बचा है, एक भैंसा बचा है बड़ा, बड़े सींगड़ा वाला, तू उसका ध्यान कर, उससे क्या होगा मैं बताऊंगा क्या होगा। बोले तुम किसका ध्यान कर रहे थे। बोले मेरे पास भी इतना गगन घसा था बड़ा, बहुत बड़ा, ये कहीं नहीं लगता, ऐसा एक अलौकिक भैंसा है जो किसी से डरता नहीं था, नता उसका ध्यान करता हूँ मैं, सुखी रहता हूँ। बोले अच्छा, मैं बैठ गया बेचारा, ध्यान करने लगा, मैं भैंसा हो गया हूँ, भैंसा हो गया हूँ, भैंसा हो गया हूँ। करते करते उसको ऐसी बात बैठ गई कि मैं सचमुच रूपांतरण हो गया। अब मुनिराज कहते हैं, रामलाल बाहर निकला, महाराज मैं कैसे निकलूँ, मेरे सिंह टूट जाएंगे, पेट फट जाएगा, दरवाजा तो बहुत छोटा है। अच्छा अच्छा तुम भैंसा हो गया। हाँ मैं भैंसा हो गया। अच्छा तो एक काम कर, तू वापस देख, भैंसा अलग खड़ा है और मैं अलग खड़ा हूँ, भैंसा अलग खड़ा है, मैं अलग खड़ा हूँ, मैं वही दुबला पतला रामलाल। उसको फिर रिवर्स प्रोसेस में डाला, धीरे धीरे उसको कहा, अब निकला। हाँ अब निकला। क्या हो गया था उसको ये बताओ, वो भैंसा हो गया था कि नहीं, निश्चय से कि व्यवहार से, चाणक्य कर बोलो भाई साहब, निश्चय से हो गया था, निश्चय से मतलब समझ रहे, उसकी मान्यता रूपी निश्चय में मैं हो गया, हुआ तो था नहीं, ना निश्चय से ना व्यवहार से, बस यही दशा इस जीव की हो रही है। ये सब कौन पालेगा पोसेगा, ये सब छूट जाएगा, तू क्या लेके आया था इस पर्याय में, ख्याल में है ना। तो ये जीव को यहाँ पर भेद ज्ञान करा रहे हैं, निर्णय कराते हैं, तो एक बार विचार कर, तू अपनी स्वसत्तावलंबी अपनी स्वरूप की सामर्थ्य को तो पहचान एक बार, सर्व सामर्थ्य का धारक परमेश्वर मुट्ठी में रखे सोने की तरह अपने आप को भूल रहा है ना। 38 गज कहाँ है आत्मा, कौन है। एक बहुत पहले एक व्यक्ति हो गया, शायद मैनचेस्टर या कहाँ का था, इंग्लैंड का, उसके दिमाग में ऐसी खुरापात हुई, बहुत 50-60 साल पुरानी बात होगी, जिंदगी भर पढ़ता रहा, कई विषयों में एमए किया, डॉक्टरी इंजीनियरिंग परमिशन ले लेके 43 की कितनी 45 की एज तक, सिंगल एलोन अनमेरिड, फिलासफर की तरह रहता था। और वो सोचता है अब गुरु नहीं है, कॉलेज नहीं है, पुस्तकें नहीं है, ज्ञान तो मेरे अंदर है, अब एक पता लगाना है, बाकी रहेगा तेजानी जी, ये ज्ञान स्टोर कहाँ है, हार्ट में के हेड में, सेट्टे सर कहाँ स्टोर होता है ज्ञान का, ऐसा होना चाहिए ना, खुद रुचि करेगा तो पता लगेगा। तो किसी ने कहा इसका जवाब तुम्हें भारत में मिल सकता है, आत्मा परमात्मा वाले वहाँ बहुत हैं। और वो पहुँचा भदेनी घाट बनारस, गंगा किनारे, सियादवाद विद्यालय, पंडित कैलाश चंद जी, फूलचंद जी वगैरह वहाँ रहते थे ना, तो मोटे पंडित हैं, बोले इनसे पूछो। तो एक ही प्रश्न था, पंडित जी आपने आत्मा देखा है, बोले हाँ, बोले मुझे दिखाओ, बोले पूछने वाला आत्मा और बताने वाला भी आत्मा, बोले मुझे तो नहीं दिखता, मुझे सबको, वो कहते सबको दिख रहा है, ये बताओ तुमने देख करके कहा मुझे नहीं दिखता कि बिना देखे का, मुझे आत्मा नहीं दिखता, तो तुमने देख करके कहा कि बिना देखे कहा? तो चुप हो गया, कहाँ दिखता है? इसको अनादि से टेव पड़ी इंद्रिय ज्ञान की, आँख से दिखना चाहिए, कोई रूपी पदार्थ होना चाहिए, या तो अतीन्द्रिय महापदार्थ, तो कोई ताकत ऐसी है। मन ज्ञान ऐसा है, अनिंद्रिय कहते हैं, उसके द्वारा रूपी अरूपी सबका विचार हो सकता है। साइको एनालिसिस जो करते हैं ना मनोविज्ञान, वो सही है, मन के द्वारा कर विचार तो पाओ। तो इस प्रकार का निर्णय करते करते उसको वो बताते थे पंडित जी, एक अंधेरे में ले गए, बताओ अभी क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, ऐसा किसको दिख रहा है? ये काला काला अंधेरा किसको दिख रहा है? कि देखने वाला तो मौजूद, ये जानने देखने वाला ही मैं हूँ। ये जब तक जीव को ज्ञान में नक्की नहीं होता, तब तक वो कितना ही धर्म के नाम पर नाच ले, कूद ले, त्याग तपस्या कर ले, उसको औपसमिक भाव की प्राप्ति नहीं होगी। पांच भाव की बात की थी ना, औदिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं होता, औपसमिक भाव के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, छायक भाव के बिना धर्म की पूर्णता नहीं होती, छवस्मिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं होता, और पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव ही नहीं होता। जीव ही नहीं होता, वो शुद्ध जीवत्व भाव, शुद्ध जीवत्व भाव। तो यहाँ ही आचार्य देव पांच के द्वारा, ये बोलों के द्वारा कहते हैं, मैं अपने आत्मा को कैसा मानता हूँ? ज्ञानात्मक, दर्शनभूत, अतीन्द्रिय महापदार्थ, ध्रुव अचल निरालंब और शुद्ध मानता हूँ। हम आप कैसा मानते? अब पहली लाइन टीका की है, टीका में पहली लाइन, शुद्धात्मा सत और अहेतुक तो होने से, ये दो पॉइंट कोई छोटी मोटी नहीं है भाई साहब, सत और अहेतुक तो, जो सत होता है वो त्रिकालिक होता है, सेल्फ एग्जिस्टिंग होता है। आज तो विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है ना, एक भी परमाणु नया पैदा नहीं होता, अवस्था बदलती रहती है, चेंज होता रहता है। सत विद्यमान, अस्तित्व वाला, होने वाला, अहेतुक तो, जिसका कोई कारण नहीं, अकारण। आत्मा को किसने पैदा किया? माता पिता ने? कौन है? तो वो कह रहे अकारण तुम है। तो कोई भी पदार्थ की सत्ता होगी तो अनादि अनंत तो वही टिक सकता है। 98 गाथा में पढ़ा था अपन ने, साधनांतर की अपेक्षा नहीं होती, और अपने स्वभाव से परिपूर्ण लबालब होता है। स्वभाव में कमी ऊनप होगी तो पर मुखापेक्षी रहना पड़ेगा, पर की तरफ ताकना झाँकना पड़ेगा। कोई भी द्रव क्षेत्रों में ऐसा नहीं है जिसके अंदर में किसी प्रकार की अपूर्णता हो। तो अज्ञानी को भासना है मेरे में नहीं है, और अनादि अनंत और स्वतः सिद्ध है। जिसने अपनी स्वरूप सत्ता को अनादि अनंत स्वतः सिद्ध सब डाला है, इसलिए आत्मा की शुद्धात्मा ही ध्रुव है। इसलिए हेतु बता रहे आत्मा के लिए, क्योंकि मैं कभी अभाव को प्राप्त नहीं हुआ, अनंत पर्याय आई और चली गई, चाहे आसमान जाति ध्रुव पर्याय हो और चाहे भी राग द्वेष की पर्याय हो, ये सब चली गई, लेकिन मेरा ज्ञान स्वभाव जो कहते हो इंटैक्ट है, अनडिस्टर्ब है, सदैव विद्यमान है, उसको कोई आँच नहीं आई। इसलिए आचार्य इसको कहते हैं ध्यान का ध्येय, ध्येय पूर्वक ध्येय। इसके साथ ही वो है नहीं उर्वी स्पर तो मैं आता हूँ, एक समय सार की गाथा 412 निकाल, नहीं आता? अरे वो तुम लेने वाले तो भी हैं 8-10 मिनट। इससे लिंक है, अपनी भूल पकड़ा रहे आचार्य, निकाल सकते हो? समय सार गाथा 412, मोक पे अपाणम ठवे ही, मोक पे अपाणम ठवे तम चेव झाई तम चेय। हाँ वही, और तथ्यव बेहर निच्छम मा बेहर सु अन्न दब्बे सु, तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्यान अनुभव तू से, उसमें ही नित विहार कर न विहर पर द्रव्यों में हरे। चलो मैं इसमें से मैंने रखी थी निकाल के वो लेता हूँ, देख। हे भक्त तू मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को स्थापित कर। पहला पॉइंट क्या किया? पहले तेरी डायरेक्शन
इधर कर, स्थापित कर, एडमिशन ले पहले मोक्ष मार्ग में, उसके लिए जो जो लायकात बताए हुए सब कह दी, स्थापित कर। तम चेत एव ध्यायस, उसी का ध्यान कर, ध्यान कर माने एकाग्रता, उसी को देख जा। फिर तम चेतयस्व, उसी को चेत अनुभव कर, स्थापित कर, एकाग्रता कर और अनुभव कर। तो पहले नक्की तो हो कि ये मैं हूं, वो तो करा दिया इसमें आचार्य, तब कह रहे ये बाहर का श्रवणोपासक लिंग माने श्रावक लिंग या मुनि लिंग, ये वास्तविक नहीं है, ये असली मैं नहीं है। असली मैं जिसको प्राप्त होता है उसके साथ ये पाए तो जाते हैं, बाहर से पहचान होती है द्रव्यलिंग आदि से। ये लिखा है इसके पहले गाथा में, यहाँ द्रव्यलिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चरित में लगाने का वचन है, ये सामान्य परमर्थ वचन है। पूरी गाथा है उसकी चल रही, अब देखना पहली लाइन इसमें, और उसी में निरंतर विहार कर, स्थापित कर, ध्यान कर, अनुभव कर, उसी में निरंतर विहार कर, निरंतर अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। मन उपयोग को स्वयं आत्मा से अलग करके, अलग करके माने जो अनात्मा उन्हें मत घुमा फिरा, परद्रव्य पर भाव के चिंतन में विकताओं में क्यों अपनी ज्ञान की बर्बादी करता है। अगर अपने स्वरूप सत्ता को कैच कर लिया, इसकी टीका की गजब की टीका अमृत चंद्राचार्य ने लिखी, पहली लाइन ही देखो क्या बतलाया था, अपनी भूल किसकी है, मिथ्यात्व आदि की नहीं कह रहे थे, ज्ञान टार्च की कह रहे, देखो निकली क्या इसमें, तो फिर इसमें आ जाती तो बहुत अच्छा रहता, सामने कहाँ चला गया, बोला लो ना उसको फोन, बहुत ही दो लाइन बता ना। चलो एवं स्वयं अर्थात अपना आत्मा अनादि संसार से लेकर अपनी प्रज्ञा बुद्धि के दोष से परद्रव्य में राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी, क्या वाक्य दिया, अपने आत्मा अनादि से लेकर आज तक अपनी बुद्धि के दोष से, प्रज्ञा के अपराध से परद्रव्य में राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी, गंदगी में कीचड़ पड़ा हुआ होने पर भी, अनादि से प्रज्ञा, अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटाकर, जब कसाई मंद हो, कसाई जब मंद हो, अब देखना कीचड़ बहता है पूरा गंदा दिखता है, जब वो थोड़ा बरसात कम होती है तो क्या होता है, वो कीचड़ नीचे बैठता है ना, थोड़ा उसकी मलिनता कम होती है, पानी बहता दिखता है, तो उसे मालूम पड़ता है अरे पानी अलग है और कीचड़ अलग है, कुछ तो ख्याल में आए ना। अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटाकर उसे अति निश्चलता पूर्वक दर्शन ज्ञान चरित में निरंतर स्थापित कर, उसी टॉर्च को परोन्मुखता छुड़ाकर सोन्मुख हो जा, जहां से ज्ञान की किरणें आ रही, ज्ञान किरणों को उससे अटैच कर, कहां से आ रही, कौन है तुम, किसका है ये ज्ञान, ज्ञायक स्वभाव, वो ज्ञायक तत्व को पकड़, उसमें स्थापित कर दर्शन ज्ञान चरित में, उसकी श्रद्धा कर, उसको जान और उसमें लीन हो, तथा समस्त अनचिंता के निरोध द्वारा वो एकाग्र चिंता निरोध हो ध्यान, ये विषय चल रहा ना, जहाँ जहाँ आया तो मैं उस पॉइंट को टच करता हूँ, अन्य चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान कर, निकलना नहीं, 412 गाथा 10 मिनट का बोल के देते, खुद पढ़ोगे ना तो मजा आए। स्थापित कर, उसमें का ध्यान कर, समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर दर्शन ज्ञान चरित्र को ही चेत अनुभव कर, तीन पॉइंट दिए, कहाँ स्थापित कर अपने को, अनादि से कहाँ स्थापित था, निकला ही ना ठीक है, हाँ अनादि से कहाँ था, कीचड़ में लिखा था ना पहले, अपना अनादि संसार से लेकर अपनी प्रज्ञा के दोष से, अपनी भूल से, मिथ्या तो नहीं लिखा, तुम ज्ञान वाला आँख वाला होकर गुट गड्ढे में पड़ रहा है, चुके किसको दोष देता है, राग द्वेष आदि परद्रव्य में निरंतर स्थित रहता हुआ उनमें एकत्व का अनुभव करता था, ऐसा दशा में पड़ा हुआ रहता आने पर भी अब तेरी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ज्ञानी की देशना सुनता है, कर विचार तो पाम विचार करता है, ये प्रज्ञा का गुण खड़ा होता है। हूँ कौन छूँ क्या थी थे जो स्वरूप का उसका बतलाया जाता है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम, तो उस तरफ वो विचार करता है। उसने उसमें से राग द्वेषादि प्रदर्म से अपने को हटाया, अति निश्चलता पूर्वक क्या किया, दर्शन ज्ञान चरित्र में अपने को स्थापित करता है, स्थापित करता है, स्थापित करता मतलब ठीक है चल रही ठीक है। उसमें अपने को स्थापित करता है और उसी का फिर ध्यान करता है। अब कैसे करता है, समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा, समस्त अन्य विकल्पों परद्रव प्रभाव संबंधी शुभ शुभ बाह्य व्रत आदि का भी विकल्प सब छोड़कर एक निज आत्मा को ही ध्याता है। अन्य चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चरित्र का ही ध्यान कर, आचार्य कभी आदेश देते हैं, सिर्फ इसका दिया है जान, स्व समय जान, पर समय जान, अरस्मरुम अगंधम ऐसा उसमें आता ना अनंदित जान, यहाँ पर भी जान, बस जानने के आदेश आए अगर आचार्य का है, तू ऐसा जान ऐसा मत जान, तू ऐसा है ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा क्या कर सकते आचार्य। उसी का ध्यान कर, समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा, अपन ने प्रवचन सार में 124 गाथा से देखा था, आत्मा बड़े जो कराते हैं तेनु नाम कर्म, अभी गुजराती में बोलती, आत्मा के द्वारा जो किया जाता है, आत्मा बड़े जी कराते हुए तेनु नाम कर्म, और वो कर्म का जो वेदन होता है अनुभव, वो उसका कर्म का फल, ये सब है। तो जीव ने अनादि काल से कर्म चेतना कर्म फल चेतना को ही भोगा देखा है, करूं करूं भोगूं भोगूं, लेकिन मैं अपने को जानूं देखूं, ये कभी इसने विचार कोटि में लिया नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर दर्शन ज्ञान चरित्र को ही चेत अनुभव कर। जब किसी वस्तु के प्रति उपयोग सन्मुख होकर उसका रस स्वाद लेता है, तो उस वस्तु का संचेतन कहलाता है, उस वस्तु का संचेतन कहलाता है। जब ये अपना ज्ञान उपयोग अपने स्वरूप वस्तु तो अपनी वस्तु का एकाग्र होकर के, यह मैं हूँ परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक, तो बोले परद्रव्यंत आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कल, आप रूप में लीनता फिर चारित सम्यक चतुष्टय। तो यही बात इसमें बता रहे हैं, सब जगह प्रति क्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा, एक लाइन रहेगी, अनुभव कर द्रव्य के स्वभाव के बस से अपने प्रति क्षण जो परिणाम हो रहे हैं उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा, अपने प्रणाम अपने परिणामी पने के द्वारा तन्मय प्रणाम वाला दर्शन ज्ञान चार्थमय प्रणाम वाला, ये आत्मा के प्रणाम, राग द्वेष भद्रव आत्मा के प्रणाम नहीं, उनसे तन्मय होकर उनके द्वारा दर्शन ज्ञान चरित्र में ही विहार कर, तथा ज्ञान रूप को एक को ही अचलतया अवलंबन करता हुआ जो गे रूप होने से उपाधि स्वरूप हैं, ऐसे सर्व ओर से फैलते हुए समस्त परद्रव्यों में किंचित मात्र विहार मत कर। ये शब्द है इसमें, ज्ञान रूप को एक को ही अचलतया अवलंबन करता हुआ, जो अभी आया था ना, ध्रुवमचन मनालम मरणे हम अपगम सुनता, सब जगह एक ही टोना चरदेव की है, इस प्रकार से इसके प्रयोग में मैं तो ले जाऊंगा, माने हाउ टू एक्चुअलाइज, बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए तो आचार्य ने लिखा है 144 समय सारगाथा में जो बात आई, क्या हमने श्रुत के अवलंबन से ज्ञायक स्वाभाविक आत्मा का नक्की कर लिया, तो दृढ़ता होना चाहिए, जैसे श्रीमद जी ने लिखा है, मारक साँचा मिल गया छूट गए सब संदेह, होना था सो हो गया भिन्न के निधि, अपने को इतने अभ्यास से ये बात तो पकड़ मजबूत में आ गई, दिस इज व्हाट आई एम एंड दिस इज व्हाट आई एम नॉट, ये मैं हूँ मैं नहीं। अब ये उपयोग को उस तरफ ही उसके चिंतन में रखना, तो कहाँ की इंद्रियाँ तो बिल्कुल काम की नहीं है, इंद्रियाँ तो जड़ पदार्थों से जुड़ती हैं, तो मन के द्वारा, मन का वैसे रूपी अरूपी दोनों है, तुम्हें अरूपी ज्ञानात्मक अतिंद्रिय महापदार्थ जो पांच बोला है ऐसा अंदर में चिंतन में जब जीव लेता है तो उसके उपयोग में धीरे धीरे निरंतर ये प्रवाह चलता है यह मैं। अरे उसके लिए पिंडस पदस्थ रूपस रूपातीत सब ध्यान क्यों बताएं बिगिनर्स के लिए, ये सब शरीर जल गया, ये सब हो गया, मैं एक स्फट कमण की तरह सिद्ध भगवान की तरह बैठा हूँ सिद्ध शिला पर बिल्कुल ऐसा ये मैं हूँ, ऐसा उपयोग को कंसंट्रेट करते 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 अभ्यास करते करते उसको उसका अनुभव हो जाता है। एक ये प्रैक्टिकल है और किसी को तत्काल हो जाए, एक जनरल राजमार्ग जिसे कहा आचार्य ने वो बताया जाए ध्रुव संग्रह में सब जगह। तो यह मैं मैंने मतियां जैसे मैं एक बात कहता हूँ, अभी अपना समय हो गया, एक अपन सिर्फ 15-20 सेकंड के लिए सब आंख बंद करके जरा सोचो ये जो बोल कहे हूँ कौन छुमन, मैं एक ज्ञानात्मक दर्शनभूत अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव अचल निरालंब, जो भी बोल आप एक पकड़ लो एक जस्ट सोचो, ये सब राख हो गया जल गया, मैं तो ज्यों कहते हूँ हीरा की तरह, विचार करो। समय कम है इसलिए मैंने वो कर दिया, तो समय लगेगा। ऐसा डेली 24 घंटे में सोते समय या प्रातः उठ के आप एक आदत डालिए, कोई भी हरि गीत पढ़िए 38 गाथा तक, कोई भी उसके माध्यम से, क्योंकि जीव को रागी है तो उसको कोई माध्यम चाहिए और उसे चिंतन करो। जैसे 102 गाथा नियम सार की है, एगो में सत्सदो अप्पा नान दंसन लखनऊ से सामे बायरा भाभा सभ्य संयोग लक्षण, बस मैं असली मैं को ही अपना उपयोग का ध्येय बनाओ केंद्रित करो, वही चिंतन चलेगा तो धीरे धीरे जगत के विकल्प जाल छूटेंगे और ये अभ्यास होगा। अनादि का इतना अभ्यास है ना राग द्वेष का, फट से उपयोग भागता है, चाहे जाप दियो कुछ करो। तो एक बार सतपंडित कैलाश चंद जी बनारस वाले लिखा था कि हम आपकी चर्चा द्रवगुण पर्याय की चर्चा पर रुक गई है, ये गाड़ी अंदर बढ़ना चाहिए, जैसे गुरुदेव वगैरह ने प्राप्त किया तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं हम त्याग तपस्या करके बैठ जाऊँ, उससे वो भी नहीं है मार्ग। पहले तुम अपने स्वरूप का अनुसंधान कर और अनुसंधान करके उसका रस पान कर, फिर उसको स्वयं आएगा करिए विकल्प जालों से बस हो बस हो, तो स्वयं वो त्यागी वृत्ति होना चाहिए, माने करना नहीं पड़ेगा फिर उसको आनंद आएगा, जितना भी जंजाल है वो कम हो। जो श्रीमद जी का बोले ना आयु क्या है जंजाल छोटी कर आयु जिंदगी लंबी लाख से ऐसा। Yes, sir.